आज है 22 दिसंबर दिन मंगलवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूँ सुशीला सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने डीडीसीए में कथित घोटाले की चर्चा के लिए बुलाया दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र।
जो उस दौरान डीडीसीए के अध्यक्ष थे अरुण जेटली जी, वो जिम्मेदार हैं। जो वो कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मानहानि करना चाहते हैं, वो करते रहे, उसका हम जवाब देंगे। हम कोर्ट में भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे और सदन में भी लड़ेंगे।
तो बीजेपी के सांसद कीर्ति आजाद ने कहा एसआईटी करे इस मामले की जांच। नेपाल सरकार ने किया संविधान में संशोधन करने का फैसला।
उसमें खासकर मधुसी मोर्चा ने जो बात उठाई है समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व और जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण।
और सोनपुर मेले में कैसे कर रही है सामुदायिक पुलिस पर्यटकों की मदद, सुनेंगे विशेष रिपोर्ट। लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। दिल्ली सरकार ने डीडीसीए और सीबीआई छापों पर चर्चा के लिए आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी थी। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर एक आत्मघाती हमले में 6 विदेशी सैनिकों की मौत हो गई है। इस हमले में 6 अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है। अफगानिस्तान में गठबंधन सेना का नेतृत्व कर रहे नाटो ने हमले की पुष्टि की, लेकिन मारे गए सैनिक किस देश के हैं ये साफ नहीं किया। गठबंधन सेना के ब्रिगेडियर जनरल विलियम शॉफनर ने कहा कि मारे गए 6 सैनिक विदेशी हैं और 3 विदेशी सैनिक घायल हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह माना है कि वे और उनका प्रशासन लोगों को इस बारे में सूचित करने में असफल रहे हैं कि वो कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ क्या रणनीति बना रहे हैं। परिवार के साथ हवाई द्वीप पर छुट्टियों से जाने से पहले उन्होंने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में ये बात कही। ओबामा ने कहा,
On our side, I think that there is a legitimate criticism of
मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर मैंने और मेरे प्रशासन ने जैसा काम किया उस पर हमारी जो आलोचना हो रही है वो सही है। मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि पिछले एक साल से हमने जनता को ये नहीं बताया कि हम आईएस को हराने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। ऐसे में अगर लोगों को ये नहीं पता कि हम आईएस पर अब तक 9,000 हवाई हमले कर चुके हैं, अगर उन्हें ये नहीं पता कि सिंजर और तिकरित जैसे शहर जो उनके कब्जे में थे उन्हें छुड़ा लिया गया है, तो यकीनन वो यही सोचेंगे कि हम काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लोगों को हमारी हर कार्रवाई के बारे में पता हो। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। 2004 के बाद से कच्चे तेल के दाम सोमवार को सबसे नीचे गिरे। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $36.5 प्रति बैरल हो गई, जो जुलाई 2004 के बाद से सबसे कम है। हालांकि कुछ देर बाद इसकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ और ये $36.56 प्रति बैरल तक पहुंचा। वैश्विक रूप से तेल के अधिक उत्पादन की वजह से ऐसा हुआ है। एक साल पहले तक ब्रेंट के कच्चे तेल की कीमत $60 प्रति बैरल थी। वहीं जून 2014 में इसकी कीमत $115 प्रति बैरल थी। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बुरुंडी की सरकार पर बेगुनाह लोगों की हत्या और ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। एमनेस्टी के अनुसार चरमपंथी संगठन ने जब सेना के 3 पोस्ट पर हमला किया था उसके बदले में हुई कार्रवाई में 11 दिसंबर को 80 लोग मारे गए थे। सरकार ने उन सभी लोगों को चरमपंथी बताया, लेकिन संस्था के अनुसार उसमें से अधिकतर निर्दोष नागरिक थे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ या डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा जहां एक ओर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राजनीति का मुद्दा बना हुआ है, वहीं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीडीसीए के कथित घोटाले को लेकर विधानसभा का सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में जांच आयोग बिठाने पर चर्चा होगी। उधर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विशेष सत्र में सरकार के रुख का विरोध करने की रणनीति बनाई है। इससे पहले कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 6 लोगों के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। हालांकि इसके बाद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि वो डीडीसीए के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते रहेंगे। एक रिपोर्ट के साथ इकबाल अहमद।
ڈی ڈی سی اے کا مدعا کل سنسد میں بحث کا وشے بنا اور آج اسے لے کر دلی ودھان سبھا کا وشیش ستر بلایا گیا ہے۔ وشیش ستر آیوجت کیے جانے کی جانکاری کل دلی کے مکھیمنتری اروند کیجریوال نے ٹویٹر کے ذریعے دی۔ کیجریوال نے کہا کہ ڈی ڈی سی اے گھوٹالے اور دلی سچیوالے پر سی بی آئی کے چھاپوں کو لے کر ودھان سبھا کا وشیش ستر بلایا گیا ہے۔ بیتے دنوں دلی سچیوالے پر جب سی بی آئی نے چھاپے مارے تھے تو کیجریوال نے آروپ لگایا تھا کہ سی بی آئی کی ٹیم ڈی ڈی سی اے سے جڑی فائلیں تلاشنے آئی تھیں۔ وہیں اس معاملے کو لے کر کل کیندریہ وت منتری ارون جیٹلی نے کیجریوال سمیت چھ لوگوں کے خلاف پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں آپرادھک مانہانی کا مقدمہ درج کیا۔ انہوں نے دلی ہائی کورٹ میں بھی مانہانی کا ایک دوسرا کیس درج کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی نیتا سنجے سنگھ نے کہا کہ ان کی پارٹی بھرشٹاچار کا مدعا اٹھاتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کورٹ، سڑک اور سدن میں جواب دینے کو تیار ہیں۔
کرکٹ کا کامن ویلتھ ہوا ہے، یہ ایک مہا بھرشٹاچار ہوا ہے، اس کے اوپر سی بی آئی کی بھی ایک جانچ چل رہی ہے۔ اتنے بڑے مہا گھوٹالے کے لیے جو اس دوران ڈی ڈی سی اے کے ادھیکش تھے ارون جیٹلی جی، وہ ذمہ دار ہیں۔ جو وہ قانونی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، مانی ہانی کرنا چاہتے ہیں، وہ کرتے رہیں، اس کا ہم جواب دیں گے۔ ہم کورٹ میں بھی لڑیں گے، سڑک پہ بھی لڑیں گے اور سدن میں بھی لڑیں گے۔ اور کمیشن آف انکوائری جو اناؤنس کیا ہے اروند کیجریوال جی کی سرکار نے، اس کے اوپر بات چیت ہوگی، اس کے بارے میں ودھان سبھا کے اندر چرچا ہوگی۔
وہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کی رڑنیتی دلی ودھان سبھا میں کمیشن آف انکوائری بٹھانے کی کوشش کا ویروتھ کرنے کی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ودھائک او پی شرما کا کہنا تھا،
انکوائری کمیشن پہلی بات تو بنانے کا ان کا ادھیکار نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دوسرا، یدی انکوائری کمیشن بننا ہے تو چیف جسٹس جو ہیں ان سے وہ ریکویسٹ کریں ہیں، وہ ریٹائرڈ جج یا کسی کی وہ نیوکتی کریں۔ تو یہ اپنے گھر کے آدمی کو اٹھا کے ایک کمیشن بنا دیں جو کہ ان کے ادھیکار چھیتر میں نہیں آتا، اور اس جو چیز غلط ہوں گی ان کا ویروتھ کریں گے۔ ہماری تو سیدھی سرل رڑنیتی ہے۔
ظاہر ہے ڈی ڈی سی اے کا کتھت گھوٹالہ اب صرف بھرشٹاچار کا معاملہ نہیں رہ گیا ہے، بلکہ یہ راجنیتی کا ایک ایسا مدعا بن گیا ہے جسے بھارتیہ جنتا پارٹی اور عام آدمی پارٹی دونوں ہی اپنے حق میں بھنانا چاہتی ہے۔
دلی کے مکھیہ منتری نے بلایا ودھان سبھا کا وشیش ستر، یہ تھی اقبال احمد کی رپورٹ۔ ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے سانسد کیرتی آزاد کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ڈی ڈی سی اے میں کتھت بھرشٹاچار کا معاملہ اٹھایا ہے، اور انہوں نے کل سنسد میں ڈی ڈی سی اے کے بھرشٹاچار کی جانچ ایس آئی ٹی سے کرانے کی مانگ کی۔ ہمارے سہیوگی واتسل رائے نے کیرتی آزاد سے بات کی اور پوچھا کہ جب سی بی آئی معاملے کی جانچ کر رہی ہے تو پھر ایس آئی ٹی سے جانچ کرانے کی مانگ کا مقصد کیا ہے۔
سی بی آئی تو پہلے ہی دیکھ رہی ہے معاملے کو۔ ہم نے تو اس کر کے کہا کہ لوگ ادھکتر یہ کہتے ہیں کہ سی بی آئی کا دروپیوگ کرتی ہے سرکار، یہ سب ہوتا ہے، تو ان سبوں کو دیکھتے ہم نے کہا کہ اگر کسی کو جھنجھٹ نہ ہو، کسی کو جھنجھٹ اگر سی بی آئی سے ہو تو ایس آئی ٹی لگوا لیجیے۔
جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف مانہانی کا مقدمہ کیوں نہیں کیا گیا، جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں تو کہیں ایسا لگتا ہے، جب آپ نے پریس کانفرنس کی اس میں کہا کہ میں کسی کو ویکتیگت طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات مدعے کی ہے۔
ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی مدعے کی ہی بات ہے نا، یہ تو وشے میں نے اٹھایا تھا اور میرے مدعے کو ہائی جیک کر رہی ہے یہ آپ پارٹی، یہ کیسے ہائی جیک کر کے چلی جائے گی؟ یہ اٹھائے تو میں نے تھے، تین چار چٹیاں میری دکھا دی، اس کا مطلب اس کا ہو گیا مدعا، یہ تو غلط بات ہے۔ مدعے تو ہم نے این سی ٹی نے اٹھائے، بشن سنگھ بیدی جو این سی ٹی کرکٹ آف ڈلہی کے ادھیکش ہیں ایسوسی ایشن کے، اور ہمارے ساتھ 150 کرکٹر ہیں جو فرسٹ کلاس کرکٹرز ہیں، انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں، اس کے علاوہ دوسرے ہیں، ہم سبھی اس کے ممبر ہیں۔ تو یہ وشے تو ہم لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے 9 سال سے۔
اس مدعے کو آپ نے اٹھایا ہے، ہائی لائٹ ہوا ہے، اس پر چرچا ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، لوگ صفائی دے رہے ہیں، اب آپ آگے کی کیا راہ؟
میں بڑی گمبھیرتا سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر گمبھیرتا سے انوسندھان ہونا چاہیے۔ جو کھیلوں کے اندر لوگ اس پرکار کے فرضی کمپنیوں کے نام دیتے ہیں، کھلاڑیوں سے پیسے مانگے جاتے ہیں، ہندو میں انٹرویو آیا تھا ابھی کچھ دن پہلے وراٹ کوہلی کا، کسی نے دیکھا نہیں، جس میں اس نے کہا کہ ان کے پتا سے بھی پیسہ مانگا گیا تھا ٹیم میں کھیلنے کے لیے، تو ان کے پتا نے منع کر دیا تھا۔ یہ ساری گمبھیر آروپ تو لگے ہوئے ہیں بھائیا، ڈی ڈی سی اے میں مانگے تھے پیسے کسی نے، اب وہ خود بھارت کا کپتان کہہ رہا ہے، اب اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے؟
ڈی ڈی سی اے کی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، دلی ودھان سبھا کا ایک وشیش ستر ہو رہا ہے، تو اس سے آپ آگے کیا کچھ نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کرکٹ کا بھلا ہوگا؟
بھیا مجھے کیا معلوم، ایک جنتا کا پرتندھی کے ہونے کے ناطے میں نے اس وشے کو اٹھایا، ایک کھلاڑی ہرے سے ہم، اور کھلاڑی ہونے کے ناطے میرے سامنے مدعا آیا، بشن سنگھ بیدی جی نے کہا آؤ ہمارے ساتھ جڑو، 10 سال پہلے میں جڑا، और उसके बाद जिस किस में जाता हूँ तो मेरी जुनून चढ़ जाती है। मैंने जुनून के साथ में सब कुछ कर दिया, आपके सामने दे दिया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अब आप अनुसंधान कीजिए और मुझे बताइए कि क्या सही है और क्या गलत।
बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। साल 2012 में हुए निर्भया बलात्कार मामले में नाबालिग दोषी की रिहाई के बाद से कानून बदलने की मांग उठ रही है। राज्यसभा में आज जुवेनाइल जस्टिस बिल पास हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अरविंद जैन याद दिलाते हैं कि जुवेनाइल मामलों में उम्र सीमा साल 2000 में बढ़ाई गई थी। वो ये भी सवाल उठाते हैं कि सिर्फ एक केस के आधार पर कानून में बदलाव कितना तर्कसंगत है। पूरे मामले पर एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
ये आवाज उन लोगों की है जो कल एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे और निर्भया को इंसाफ दिलाने की मांग उठाई। जंतर मंतर पर जुटे लोग निर्भया मामले में जुवेनाइल दोषी की रिहाई पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। वो राज्यसभा में लंबित जुवेनाइल जस्टिस बिल को पास कराने की मांग उठा रहे थे। इस मांग का समर्थन करने के लिए निर्भया यानी ज्योति सिंह की मां आशा देवी और पिता बद्रीनाथ सिंह भी जंतर मंतर पर मौजूद थे।
जितने भी लोग हैं उन सब लोगों से हाथ जोड़कर एक विनती है कि कृपया हमारे लिए ना सही लेकिन देश की तमाम बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए इस जुवेनाइल कानून को आप पास करिए।
ये मुद्दा कल राज्यसभा में भी उठा लेकिन बिल पास नहीं हो सका। आज भी इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा होनी है। केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं,
बिल को पास होना चाहिए था लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी के मतलब अराजकता भरे व्यवहार के चलते ये बिल पास नहीं हो पाया। इससे पहले हमने इसको जो है वो तीन बार संसद के अंदर इसको राज्यसभा में इसको हमने लिस्ट किया, 8 तारीख को लिस्ट किया, 9 को किया लिस्ट और 11 को लिस्ट किया हुआ है। हमें उम्मीद है कि कल इस पर चर्चा होगी और इसमें एक मजबूत कानून बनेगा।
सरकार को उम्मीद है कि ये बिल आज पास हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अरविंद जैन याद दिलाते हैं कि जुवेनाइल की उम्र को साल 2000 में बढ़ाया गया था।
पहले जो जुवेनाइल की उम्र होती थी लड़कों के लिए 16, लड़कियों के लिए 18, तो काफी सोच विचार के बाद जो अभी वर्तमान मंत्री हैं मेनका गांधी, वाजपेयी की सरकार में यही मेनका गांधी थी जिन्होंने 16 से बढ़ा करके इसे 18 करवाया था उस वक्त।
जैन का कहना है कि साल 2014-15 में भारत में जितने अपराध हुए उनमें ऐसे अपराध जिनमें नाबालिग अपराधी शामिल थे उनका हिस्सा महज 1.2% था। जैन कहते हैं कि कानून में बदलाव के साथ ये सोचना भी जरूरी है कि क्या नाबालिगों को बालिग अपराधियों के साथ रखना सही होगा।
इनको जेल में रखेंगे, कठोर अपराधियों के साथ रखेंगे तो ये जब बाहर निकल करके आएंगे तो पक्के तौर पर अपराधी बन करके निकल, तो बच्चों के प्रति जो राष्ट्र की अपनी जिम्मेवारी है, समाज की अपनी जिम्मेवारी है, उसको हम सिर्फ एक केस और जन भावनाओं के या मीडिया के दबाव में या कुछ लोगों के कुछ एनजीओस के दबाव में आकर के रोज नहीं बदल सकते।
सुप्रीम कोर्ट के वकील अरविंद जैन का कहना है कि कानून बनने के बाद भी नाबालिग अपराधियों के सुधार के लिए काम नहीं हो पाया है। वो कहते हैं कानून में बदलाव के साथ इस पर ध्यान देना भी जरूरी है।
ये थी वात्सल्य राय की रिपोर्ट।
ज्योति कलश छल की
तेरे मेरे मिलन की ये रहना।
सिने राग, संगीत के वो सुर जिन्हें सुनकर सुध बुध खो बैठे आप।
पास आइए के हम नहीं
सुर जो खोल दें यादों के पिटारे।
मन रे तू काहे ना धीर धरे।
मेरे सामने आ गया ना वो तो उस कुत्ते को वहीं जान से मार दूंगा।
इंसानी सुख दुख राग द्वेष
और प्रेम की कहानी।
बहुत अच्छी हिंदी बोलती है।
अचला शर्मा का लिखा
और परवेज आलम का निर्देशित नाटक बंधक।
जमकर के बोलो।
बीता एक और साल।
किसने क्या पाया और क्या खोया।
आपके सपनों को शब्दों में रखो।
अंतर्राष्ट्रीय पटल की उथल पुथल।
अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर।
साथ ही याद मलिका तरन्नुम की
पहली से मोहब्बत।
बीबीसी हिंदी रेडियो के वर्षांत कार्यक्रमों की सौगात 25 दिसंबर 2015 से
भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम में और सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में।
नेपाल सरकार ने अपने नए संविधान में संशोधन करने का फैसला लिया है। इस फैसले को देश में आंदोलन कर रहे मधेसियों की दो मांगों का हल निकालने की दिशा में कदम बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने नेपाल की सत्ताधारी पार्टी CPN-UML के सचिव प्रदीप गेवाली से बात की और पूछा कि केपी ओली सरकार ने क्या फैसले लिए हैं।
मधेसी मोर्चे के नए आबद्ध पार्टियों ने काफी अरसे से तराई मधेस में जो आंदोलन कर रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए कल कैबिनेट ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है। उसमें खासकर तीन बात महत्वपूर्ण है। पहले जो संविधान के संशोधन के जो प्रस्ताव पार्लियामेंट में दर्ज हुआ है उसको मधेसी मोर्चे के सहमति के आधार पर उसको जल्द से जल्द उसको कंक्लूजन में ले जाने की एक बात है। उसमें खासकर मधेसी मोर्चा ने जो बात उठाई है समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व और जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण, वो दोनों मांग वो अमेंडमेंट के जरिए उसका एड्रेस होगा। दूसरा, कैबिनेट ने ये निर्णय किया है कि जो प्रांतों को प्रदेशों की बाउंड्री के लेकर कुछ मतभिन्नताएं उसको एड्रेस करने के लिए एक हाई लेवल पॉलिटिकल मैकेनिज्म कायम की जाएगी जिसमें 3 महीने के अंदर उसको एड्रेस करेगा। और तीसरी बात, बाकी जो मांगे हैं मधेसी मोर्चा से उसके लिए भी निरंतर बातचीत करते जाने की उसमें एक कमिटमेंट है। और ये सब निर्णय करते हुए कैबिनेट ने ये आशा किया है या अपेक्षा है कि मधेसी मोर्चा आंदोलन को वापस लेगी।
तो गेवाली साहब, इस फैसले को 24 घंटे के लगभग का वक्त हो चुका है, क्या इस बीच में जो आंदोलन चला रहा है मधेसी मोर्चा, उसने सरकार से कोई संपर्क किया, कोई आश्वासन दिया, आंदोलन वापसी हुई?
क्लियर कट तो उन्होंने नहीं चाहा है, लेकिन उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड हमको प्राप्त हुआ है। शाम को एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी, आप जानते हैं कि हमारे विदेश मंत्री सरकारी वार्ता टोली के प्रमुख हैं, उनके कार्यकक्ष में मधेसी मोर्चा के नेताओं के साथ एक इनफॉर्मल बातचीत हुई थी।
आप सत्ताधारी पार्टी के सचिव हैं, आपको क्या उम्मीद है कितने दिन और ये गतिरोध रहेगा?
4 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, उसके चलते भारत की ओर से जो आपूर्ति में अवरोध किया गया है, एक नाकाबंदी की स्थिति है, से नेपाल के आम जनता के जीवन में काफी कठिनाई है। आप जानते हैं कि नेपाल अभी भी 8 महीने पहले के विनाशकारी भूकंप के वो पीड़ा से गुजर रहा है, उसमें ये आंदोलन और नाकाबंदी की जो स्थिति है इससे काफी परेशानी, काफी मुसीबत नेपाली जनता को झेलना पड़ रहा है। मुझे अपेक्षा है कि आगामी हफ्ते डेढ़ हफ्ते में इस समस्या को समाधान हम ढूंढ पाएंगे।
आंदोलन कर रहे मधेसियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नेपाल ने किया संविधान में संशोधन। सत्ताधारी पार्टी CPN-UML की पार्टी के सचिव प्रदीप गेवाली से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। छत्तीसगढ़ में 2 पत्रकारों को माओवादी बताकर गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ बस्तर में राज्य भर के पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया। देश के वरिष्ठ पत्रकारों और सामाजिक संगठनों ने भी इस आंदोलन को समर्थन किया। इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी ये मामला उठा और नेता प्रतिपक्ष ने बजट सत्र में विधेयक लाने की घोषणा की। रायपुर से आलोक कुमार पुतुल की ये रिपोर्ट।
बस्तर के पत्रकार संतोष यादव को माओवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में इस साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले जुलाई में एक अखबार के प्रतिनिधि सोमारू नाग को भी ऐसे ही आरोपों में गिरफ्तार किया गया था और दोनों तब से जेल में हैं। राज्य के कई पत्रकार संगठनों ने इनकी रिहाई के लिए कई बार आंदोलन चलाया लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद सोमवार को राज्य भर के पत्रकारों ने जगदलपुर में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पत्रकार सुरक्षा कानून संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक कमल शुक्ला का कहना है कि बस्तर में निष्पक्ष पत्रकारिता मुश्किल होती जा रही है।
यहाँ युद्ध की स्थिति है, नक्सली और सरकार दोनों जो है एक पक्षी पत्रकारिता के लिए पत्रकारों के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। अगर हम उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो एक तरफ तो नक्सली हत्या करने से भी नहीं चक रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार और छत्तीसगढ़ की पुलिस, बस्तर की पुलिस पत्रकार साथियों के ऊपर फर्जी मामले बनाकर उन्हें जेल भेजने की भी कवायद कर रही है। दो साथियों को, संतोष यादव और सुमारू नाग को, इन्होंने जेल में बंद कर रखा है।
लेकिन राजधानी रायपुर में वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार का मानना है कि दोनों पत्रकारों की गिरफ्तारी का मामला स्थानीय अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया गया, जबकि इस मामले में राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए था।
बस्तर में पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर सरकार के साथ टकराव की जो नौबत आज आई है, उसके पीछे पूरे के पूरे मामले को स्थानीय अधिकारियों के भरोसे छोड़ देने की एक राजनीतिक चूक सरकार से हुई है। लोकतंत्र में राजनीतिक ताकतों की समझ कुछ अलग होती है और स्थानीय अधिकारियों की समझ कुछ अलग। ऐसे में राज्य सरकार को अपनी भूमिका निभानी थी।
जिन पत्रकारों को माओवादी होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उन पर छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा कानून भी लगाया गया है। इस जनसुरक्षा कानून को रद्द करने संबंधी एक याचिका मानवाधिकार संगठन PUCL ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। PUCL की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष डॉ. लाखन सिंह छत्तीसगढ़ में जनसुरक्षा कानून को मानवाधिकार में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं।
जन सुरक्षा कानून जब से लागू हुआ है, ये उत्साह की तरह इसे इस्तेमाल हो रहा है। इसमें कई लोग जो आदिवासी निरीह हैं, जिस जन सुरक्षा कानून का ABCD नहीं जानते, वे जेलों में पड़े हैं और उनकी जमानतें नहीं होती हैं। और हमने ये भी कहा है PUCL सुप्रीम कोर्ट में, और हमसे मांग करते हैं इस कानून को भंग करना चाहिए, कानून को रद्द करना चाहिए, और ये गैर कानूनी, ये संविधान के मूलभूत अधिकार के खिलाफ ही है।
इस बीच पत्रकारों की रिहाई का मामला विधानसभा में भी उठा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव ने पत्रकारों से बातचीत में अगले ही सत्र में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर विधेयक पेश करने की बात कही।
पत्रकारों की रक्षा के लिए प्राइवेट मेंबर्स बिल को हम लोग लाएंगे और सभी पत्रकार साथियों से इस संदर्भ में कंसल्टेशन करेंगे और कंसल्टेशन उपरांत ये बिल को प्रस्तुत किया जाए। पत्रकारिता को दबा के अगर अपनी कमजोरियों को ढांकने का प्रयास शासन करती रहेगी तो एक के बाद एक, ये मान के चलिए कि जो आपके पास एक सेफ्टी वेल्व रहता है, उस सेफ्टी वेल्व को आप नष्ट कर रहे हैं।
पत्रकारों, सामाजिक संगठनों, मानवाधिकार संगठनों और विपक्षी दल के तमाम तरह के हस्तक्षेप के बाद भी यह आश्चर्यजनक है कि पूरे मामले पर राज्य सरकार के अधिकारी और मंत्री कुछ भी कहने बताने से बच रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस तरह के धरना प्रदर्शन के बाद कुछ रास्ता निकालेगी या चुप्पी ही साधे रखेगी। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और अब समय है विशेष रिपोर्ट का। साल 2008 में बिहार के सोनपुर मेले में चल रही सामुदायिक पुलिस की खूब चर्चा हुई थी। उस वक्त इस पुलिस ने विदेशी सैलानी को एक ठग से बचाया था जो 4 समोसे के लिए 10,000 रुपये वसूल रहा था। बीते 8 साल से सामुदायिक पुलिस के नौजवान 1 महीने तक चलने वाले सोनपुर मेले में काम करते हैं। कैसे मेला घूमने आए पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान का सबब बन रही है ये पुलिस, जानने की कोशिश की सीटू तिवारी ने।
और आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, रेल ग्राम के सामने कम्युनिटी पुलिस कैंप में आपके भाई राजा बाबू बैठे हुए हैं, आप आकर मिले।
सोनपुर मेले में इस तरह की घोषणाएं दिन भर चलती रहती हैं। मेले के शोर के बीच अपनों से बिछुड़ने की जानकारी या फिर खोए पाए सामान।
हमें भाई का सुनकर शोर,
जंगल में नाचने लगा मोर,
आप लोग देखकर हो गए।
12 साल का जितेंद्र बेगूसराय का है। खिलौने के चटक रंगों में उसका बचपन क्या उलझा, माँ बाप से बिछड़ गया।
हम गए थे दुकान में खिलौना देखने, तब तक मेरी मम्मी या मेरे पापा कहीं चले गए, नहीं पता हमको।
जितेंद्र सोनपुर मेले में बने सामुदायिक पुलिस के दफ्तर में है। सामुदायिक पुलिस के जवानों ने उससे जानकारी लेकर उसके बारे में घोषणा करनी शुरू कर दी है। 2 घंटे के इंतजार के बाद जितेंद्र की मां रीता देवी पहुंची तो बेटे को रुआंसा देखकर कुछ नहीं बोल पाई।
मिल गया था, आप लोग की बहुत बहुत कृपा हो गया कि हमको बच्चा मिल गया सही समय, तो आज हम पूरा मेला में कहां लुटते।
साल 2014 में सामुदायिक पुलिस ने 3,234 मेले में बिछड़े हुए बच्चों को उनके अभिभावकों से मिलाया था। दरअसल सोनपुर मेले में सामुदायिक पुलिस की शुरुआत साल 2008 से हुई। 1 महीने के लिए लगने वाले इस मेले में सामुदायिक पुलिस पर्यटकों की सुरक्षा के लिए काम करती है। इस बार सामुदायिक पुलिस की तरफ से 451 जवान, जिसमें 65 महिलाएं शामिल हैं, मेले में तैनात हैं। सामुदायिक पुलिस के संयोजक राजीव कुमार बताते हैं कि 5 किलोमीटर के दायरे में फैले सोनपुर मेले को 18 भागों में बांटकर तैनाती की जाती है। हर स्वयंसेवक को 3 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है। सामुदायिक पुलिस की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, इस बारे में राजीव कहते हैं,
कुछ महिलाएं घूम रही हैं, उसको गलत कमेंट करना, इससे सोनपुर के मेला पर असर, सेहत पर असर पड़ रहा है। सोनपुर मेला पहले पशु मेला हुआ करता था, मेला ट्रेड फेयर मेला की ओर प्रवेश कर चुका है, तो उसमें जब लोग अच्छे लोग जब मेला में नहीं आएंगे तो मेला का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
सामुदायिक पुलिस में 1 महीने की भर्ती के लिए दशहरे के बाद से ही फॉर्म निकलने शुरू हो जाते हैं। जरूरी ट्रेनिंग के बाद स्वयं सेवकों को अपनी पसंद की ड्यूटी का वक्त लेने को कहा जाता है। बता दें कि ये पुलिस बिना वेतन के काम करती है, ऐसे में नौजवान इसमें क्यों काम करते हैं, इसका जवाब 12वीं में पढ़ने वाले पारस गुप्ता कुछ यूं देते हैं।
एक तरह से हम लोग पुण्य भी कमा लेते हैं और अपना ड्यूटी भी कर लेते हैं। इसमें है तो बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं और बहुत सारे नेता, एक्टर, को एक्टर सब आते हैं, तो उनसे हम लोग मिलते रहते हैं, तो उनसे कुछ एक्सपीरियंस होता है।
इधर मेला कमेटी के सदस्य भी सामुदायिक पुलिस के आने से खुश हैं। माधव सिंह 78 साल के हैं और बीते 25 साल से सोनपुर मेला कमेटी के सदस्य हैं। वो कहते हैं,
खोए हुए का और मिलान करने का अवसर मिला कमेटी पुलिस के आने की वजह से, और विदेशी सैलानी इनकी तरफ काफी अट्रैक्ट हुए।
एक अनुमान के मुताबिक हर साल मेले में तकरीबन 50 लाख देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। बिना किसी वेतन के मेला अवधि यानी 1 महीने तक काम करने वाले ये स्वयंसेवक चाहते हैं कि सरकार अब उनकी तरफ कुछ ध्यान दे। बीबीसी के लिए सोनपुर मेले से सीटू तिवारी की रिपोर्ट।
छोटू आ गया है, सर्कस का छोटू आ गया है, खेल अब शुरू करेगा, जल्दी कीजिए भैया, 10 रुपए का ये यहाँ से मिलेगा यहाँ से।
आपको सीटू तिवारी की ये विशेष रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर लिखेगा। और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। अमल स्टूडियो आ चुके हैं समाचार पत्रों के साथ। अमल
जी, सुशील, अगर आज की मुख्य खबरों की बात करें तो सभी अखबारों के पहले पन्ने पर डीडीसीए का जो कथित घोटाले के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जो खींचतान है वो छाई हुई है। और अगर ये तो मुख्यतः ही है हर अखबार में, लेकिन अगर अन्य खबरों की बात करें तो जनसत्ता अखबार लिखता है कि सुप्रीम, इसका शीर्षक है उसकी खबर का, कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला आयोग की अपील ठुकराई। इसमें आयोग ने निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी नाबालिग की रिहाई पर रोक की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने नकार दिया। वहीं जनसत्ता में ही चीन की आबादी से जुड़ी एक खबर है जिसका शीर्षक है कि 2 बच्चों की जरूरत समझ आई चीन को। इस खबर के अनुसार चीन की जो बूढ़ी होती आबादी है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और इससे निपटने के लिए वहां की सरकार अपनी जो 1 बच्चों वाली जो नीति है उसे बदलने को तैयार हो गई है। वहीं हिंदुस्तान हिंदी की एक खबर का शीर्षक है, रोहतक की निर्भया के कातिलों को सजाए मौत। इसमें, इस खबर में एक नेपाली युवती के साथ रेप हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जिला अदालत ने 7 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं एक और खबर के अनुसार नेपाल संविधान में संशोधन करने के लिए तैयार हो गया है और आपको याद ही होगा कि इसके लिए मधेशी पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे थे। और वहीं हिंदुस्तान हिंदी में एक और एक दिलचस्प शीर्षक है कि महज 2 मिनट की मिस यूनिवर्स। खबर के अनुसार मिस कोलंबिया को होस्ट ने गलती से मिस यूनिवर्स घोषित कर दिया था, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ उन्होंने फिलीपींस की पिया अलोंजो वत्सबैक को विजेता घोषित किया। वहीं दैनिक जागरण में एक खबर है जिसके अनुसार भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंची उर्वशी राउत ने आरोप लगाया कि उनके साथ पक्षपात किया गया था। हालांकि ये खबर लगभग सभी अखबारों में है और जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि शुरुआती 3 राउंड्स में वो पहले स्थान पर थीं, लेकिन उसके बाद उन्हें टॉप 15 में भी जगह क्यों नहीं दी गई। वहीं जागरण में ही खबर और है जो शाहरुख खान के चाहने वालों का दिन आज बना सकती है। सुशीला, खबर का शीर्षक है कि दिलवाले की दुनिया भर में दीवानगी। इसके अनुसार 3 दिनों में फिल्म ने देश में 65 और विदेशों में 56 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। वहीं दिल्ली के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है जिसमें अमर उजाला की खबर के अनुसार उन सीएनजी वाहनों को सम विषम फॉर्मूले से छूट मिलेगी जिसे महिलाएं चला रही होंगी।
जी, समाचार पत्रों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमल। और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। दिल्ली सरकार ने डीडीसीए और सीबीआई छापों पर चर्चा के लिए आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी थी। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर एक आत्मघाती हमले में 6 विदेशी सैनिकों की मौत हो गई है। इस हमले में 6 अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह माना है कि वे और उनका प्रशासन लोगों को इस बारे में सूचित करने में असफल रहे हैं कि वो कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ क्या रणनीति बना रहे हैं। 2004 के बाद से कच्चे तेल के दाम सोमवार को सबसे नीचे गिरे। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $36.5 प्रति बैरल हो गई, जो 2004 के बाद से सबसे कम है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में दोबारा होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।